ये 56 नंबर का श्लोक है और ये 56 नंबर के श्लोक के अंदर एक बात बता रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए थोड़ा सा। अनुभूतोपि अयम लोको व्यवहार क्षमोपि सन् असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तर क्षण बाधतः। जिस संसार के बारे में आप ये कहते हैं कि संसार झूठा है, वह संसार तो आदमी के अनुभव में आता है। अनुभूतोपि, अनुभव में आने पर भी अनुभूतोपि, व्यवहार क्षमोपि सन, और उसमें व्यवहार करने की क्षमता भी है। अनुभव में आता है और व्यवहार करने की क्षमता भी है। व्यवहार होने की जो क्षमता है, मैंने एक बात का पहले दिन आपके सामने उल्लेख किया था, उसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं अर्थ क्रियाकारिता, व्यवहार करने की क्षमता। उसके प्रति जब बुद्धि, जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया था कि मोदी ने कहा 8 बजे 8 तारीख को कि भाई 12 बजे के बाद ये जितने 1000 और 500 की नोट हैं वो कागज के टुकड़े हो जाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ रुपए के अंदर, लेकिन उसके अंदर आपके प्रयोजन को सिद्ध करने की सामर्थ्य खत्म हो गई। जिस वस्तु से प्रयोजन को सिद्ध करने की सामर्थ्य खत्म हो जाए, उस वस्तु से व्यक्ति को लगाव नहीं रहता। एक बात, दूसरी बात और दूसरा दृष्टांत आज मेरे दिमाग में आया। कल हमने नीचे एक दवाई मंगाई थी, अभी तो हमको भी 30 साल से दवाई खाते खाते और छोटे मोटे डॉक्टर को तो हम ऐसे पढ़ा देते। तो हमने उसकी एक्सपायरी डेट देखी, कुछ स्पष्ट नहीं लग रहा था। हमने कहा इसको वापस करो। उस डेट के बाद वो दवाई जो है आपको फायदे की जगह नुकसान कर सकती है, फायदा नहीं कर सकती। ऐसे ही सृष्टि की एक्सपायरी डेट है और सृष्टा की एक्सपायरी डेट नहीं है, ये ख्याल रखना आप। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि एक्सपायरी डेट के पहले पहले आपको उसका उपयोग करना है। यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, तब तक आप परमार्थ के लिए साधन करें। हमारी हालत तो क्या है, जब चला नहीं जाता तब तीर्थ की सोचते हैं, जब सुनने लायक नहीं बसते तब कथा सुनने की इच्छा होती है। परमार्थ एक मजबूरी नहीं, ये परमार्थ वास्तविक जीवन की एक आवश्यकता है। छुट्टी के दिन के लिए सत्संग नहीं है। तुम छुट्टी के दिन खाते हो क्या? दूसरे दिन नहीं खाते? और कोई यमराज थोड़ा तुमको शनिवार और इतवार के दिन मारेगा, वो तो मंगलवार को भी मार सकता है। यदि अध्यात्म के प्रति तुम्हारी इतनी उपेक्षा वाली बुद्धि है कि छुट्टी होगी तभी सुनेंगे, तो तुम्हारे जीवन में वो अर्थवान नहीं हो सकता, फलित नहीं हो सकता। जिस प्रकार आपके जीवन में ऐश्वर्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में ईश्वर की अनुभूति की आवश्यकता होनी चाहिए। ये मैं अभी आपको सांख्य के हिसाब से बता रहा हूं। वेदांत तो थोड़ा और आगे की बात करता है, वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सांख्य की दृष्टि से भी आप जितना ऐश्वर्य कमाने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रतिदिन ऐश्वर्य कमाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो प्रतिदिन आपको ईश्वर की अनुभूति के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। ये मिथ्या जगत, भाष्यकार भगवान लिखते हैं अनुभूतोपि अयम, अनुभव में आने पर भी, दो बातें भाष्यकार लिखते हैं, अनुभूत होने पर अनुभूति होती है और व्यवहार क्षमोपि, तो अयम का अर्थ हो गया संसार, और संसार शब्द की व्याख्या इतनी सुंदर आपने दुनिया में कहीं सुनी नहीं होगी जितनी ब्रह्मसूत्र के भाष्य में। ये जो टीका है वाचस्पति मिश्र की भामती, वो भामतीकार ने संसार शब्द की एक बड़ी सुंदर व्याख्या की है, याद रखिएगा दिमाग के अंदर। ऐसी व्याख्या भूतो न भविष्यति। उसने कहा ये संसार है क्या चीज, उत्तर देते हैं पंक्ति में, आत्मनो याथ्यात्म अननुभव निमित्त संसार, आत्मनो याथ्यात्म अननुभव, आत्मा जैसी है उसको उस रूप में अनुभव न करने का नाम ही संसार है। सांप क्या है, रस्सी जो है रस्सी का उस रूप में अनुभव न करना ही सांप है। जैसे भाष्यकार ने लिखा ज्ञाते तत्वे का संसार, तत्व का अर्थ हो गया अधिष्ठान। जैसे आपने रस्सी को देख लिया फिर सांप कहां है, ज्ञाते तत्वे, तत्व मैंने अधिष्ठान, आपने रस्सी को जान लिया फिर सांप है नहीं। उसी प्रकार से वाचस्पति लिखते हैं आत्मा जैसी है, आत्मनो याथ्यात्म मैंने जैसा है वैसा अनुभव न होना। फिर एक दूसरी चीज का अनुभव होने लगता है, कोई संसार है। क्या लिखते हैं देखो, अनुभूतोपि अयम लोको, लोक में नहीं संसार समझ लीजिए, व्यवहार क्षमोपि, और इसमें व्यवहार की योग्यता भी है, पानी प्यास बुझाता है, रूप आंखों को तृप्त करता है, कान शब्द कानों को तृप्त करते हैं, अन्न पेट भरता है, इसका नाम है व्यवहार क्षम, व्यवहार की क्षमता। लेकिन असद्रूपो यथा स्वप्न, लेकिन यह झूठा है, बोले झूठा क्यों है, इतना सब कुछ बोल दिया, अनुभव में भी आता है, व्यवहार की योग्यता है, अब फिर झूठा क्यों है। बोले झूठे इसलिए है क्योंकि उत्तर क्षण बाधतः दूस ज्ञान होने पर इसका बाद हो जाता है। ये संसार का बाद जो है ज्ञान होने के पूर्व इसका बाद नहीं होता, और ज्ञान होने के बाद जाते तत्व तत्व रस्सी का ज्ञान हो गया, सांप कहां चला गया। अच्छा जब आपको रस्सी का ज्ञान हो जाए कभी, तब आपका निश्चय क्या कहता है, कभी सांप था, किससे डर रहे थे, जो नहीं था। ये बड़ी मजेदार बात है, जो नहीं था उससे डर रहे थे, और जो नहीं था उसका अनुभव कर रहे थे, और जो नहीं था उससे व्यवहार कर रहे थे। यही है महामाया की कल्पना, यही है महामाया की रचना। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तर क्षण बाधता, जैसे स्वप्न है, सपने में व्यवहार भी होता है, अनुभव भी उसके होते हैं। लेकिन तुलसीदास ने एक बात लिखी, जे ही जानी जग जाई हराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जगने के बाद जैसे सपने की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, वो समस्या किसी प्रकार की भी हो, लेकिन उस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि आप जग गए। और जगने का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? जगने का अर्थ है जहां आप हैं वहां अपने को देखें, और जो आप हैं वो अपने को समझें। जगने में यही होता है कि जहां हम होते हैं वहां अपने को देखते हैं, जो हम होते हैं वो अपने को। तो भाष्यकार ने कहा संसार ऐसा झूठा नहीं है, लेकिन एक क्षण के बाद इसका बाद हो जाता है। जैसे शरीर है, इनका एक प्रारब्ध है, प्रारब्ध पूरा होता है इनका बाद हो जाता है, खत्म हो गया, कभी था भी कुछ पता ही नहीं चलता है। उत्तर क्षण बाधता, ये बाद होने के कारण मिथ्या है, अनुभव में आने के कारण और व्यवहार होने के कारण कोई चीज सच्ची नहीं होती कभी। यहां ऐसा होता है, एक दर्प शब्द का उपयोग आया है भगवद गीता में, कहीं आप लोगों ने सुना आया, कहीं सुना कहीं दर्प पड़ा गीता में 16वें अध्याय में। अब वो जो है वो आसुरी संपत्ति है। हाँ पक्का पक्का पक्का, मैं मानता हूं आपको। वो दर्प शब्द का एक दिन मैं कहीं बैठा हुआ था, तो बनारस से गाय घाट से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो पहले हमको पुस्तक का बड़ा शौक था, जो पुस्तक प्रकाशित होती थी जरूर मंगा देते थे हम उसको। तो मैं उसको देख रहा था, उसमें उसने एक बड़ा अच्छा दर्प शब्द के अंदर वो ज्ञानेश्वरी मैंने देखी थोड़ी, उसमें एक दृष्टांत दिया उन्होंने, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक आदमी रेगिस्तान की यात्रा पे जाता है, तो जब जाने लगा तो उसने कहा कि भाई जो मारवाड़ का कोई आदमी होगा उस आदमी को पूछ के तुम रेगिस्तान की यात्रा करना, उसको पता है कैसे वहां होता है। तो जो मारवाड़ी आदमी मिला उसको, उसने कहा देखो रेगिस्तान में पानी की बड़ी समस्या है, तो वहां तो पानी लेके यात्रा करना। अब गया तो एक घड़ा, उस समय घड़े होते होंगे जो भी होता होगा, एक घड़ा पानी का वो 10-15 गिलास पानी उसमें ले गया। भामतीकार ने दृष्टांत दिया, मैं हर बार आपको सुनाता हूं, आपके कान पवित्र कर देता हूं, अपनी वाणी पवित्र करता हूं। उन्होंने लिखा है उच्चल तुंग तरंग भंग मालेयम अभ्यरण समीप वर्ति मंदाकिनी तत्तोयम आपीय पिपासाम उपसमेत। जैसे वो रेगिस्तान की यात्रा करने लगा, सूर्य भगवान ऊपर चमके तो उसको रेती में पानी दिखने लगा। उच्चल तुंग तरंग भंग मालेयम, ऐसा पानी चमके। गंगा जी तो कभी गंदी भी हो जाती है, वो तो पानी गंदा भी नहीं होता, इतना सुंदर। लेकिन भामतीकार ने दृष्टांत बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा वो जो रेगिस्तान में जल दिखाई देता है वो आदमी की प्यास बुझाने का आश्वासन देता है, लेकिन आदमी की प्यास नहीं बुझाता। और आश्वासन इतना अच्छा देता है ना, जैसे तुमने किसी को कर्जा दिया हो और तुम मांगने के लिए जाओ, वो आपको समझाए देख ग्रीस ऐसा है, कल मैं किसी भी हालत में तेरे को शाम को 5 बजे दे दूंगा, और तुम्हारे को इतना कन्विंस कर दे कि तुमको जिसने लेने के लिए भेजा था तुम उसी को डांटने लगे, नहीं यार तो बहुत अच्छा आदमी है, कल तो देने वाला है वो। लेकिन जब तुम कल जाओ फिर वो परसों का आश्वासन दे देगा। संसार ऐसे ही है, ये आदमी को सुखी करने का आश्वासन देता है लेकिन आदमी को कभी सुखी करता नहीं, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। लेकिन आश्वासन देने में बहुत माहिर है, ऐसा आश्वासन देता है तुम किस खेत की मूली हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र सौवरी इनको फंसा दिया उसने, सामान्य व्यक्ति किस खेत की मूली है, वो तो ऐसा फंसा देता है सब, बोलता है बेटा इसी में सब कुछ है, बस तुम हो गए सुखी। और जब सुखी होकर बाहर निकलता है तो उसको लगता है सब कुछ लूट गया, और सब कुछ लूट गया इतना नहीं है हम स्वयं पिट गए, इतना लूट पिट जाता है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचता, स्वयं अपनी नजरों में गिर जाता है। भर्तृहरि हरि का एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है, अंतिम पंक्ति उसकी बताता हूं, पहली पंक्ति आपको नहीं बताता हूं। उसने कहा धिक्ताम च मदनम च इमाम च माम च, धिक्कार है मेरे लिए। श्लोक ऐसा है वो, याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता सापि अन्यम इक्षति जनम सजनोन्य सक्ता अस्मत्कृते परितुष्यति काचिदन्य धिक्तां च तंच मदनम च इमाम च माम च। मदन बोलते हैं काम के लिए, वो आदमी को ऐसा बोलता है अरे राम में तुमको क्या सुख मिलेगा जितना तुम्हें काम में सुख मिलेगा। लेकिन वो सुख का आश्वासन है, और आश्वासन ऐसा महत्वपूर्ण है कि बड़े से बड़ा समझदार उस जाल में उलझ जाता है। उलझ जाए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उलझाया किसने जरा ये समझो, क्योंकि वो सबका बाप है उलझाने वाला। फिर उलझने के बाद फिर न उलझना, ये विवेक, यही तो बड़ी बात है। असद रूप यथा स्वप्न, ये असद रूप है क्योंकि उत्तर क्षण में फिर इसका बात हो जाता है, लुटने के बाद पिटने के बाद वो गया। अब उसने पानी देखा, इतना सुंदर पानी, तो सबसे पहले वो उसने वो मारवाड़ी को गाली दिया। उसने कहा ऐसा मूर्ख, इतना सुंदर पानी यहां पीने के लिए और मेरे को गधा बना दिया है। मैं पानी को बोक के ले जा रहा हूं, यहां से ढो के ले जा रहा हूं। उसने सबसे पहले वो घड़ा जो है ना फेंक दिया, फिर गया। फिर तो मालूम है आपको फिर क्या हाल हुए होंगे उसके। हां ऐसे ही हम जो है उसका त्याग कर देते हैं और जो नहीं है उसके पीछे हाथ धो करके पड़ते हैं, लेकिन जीवन के ऐसे दौर में उसका बोध होता है कि हकीकत में वहां। इसलिए जो है उसका त्याग मत करो, जो नहीं है उसके पीछे हाथ धो के पड़े हो। इसलिए बोलते हैं उत्तर क्षण बाधात, जब उत्तर क्षण में जो है उसका बाद हो जाता है तो तीन चीज हो गई है, अनुभूति भी होती है, व्यवहार की क्षमता भी है, लेकिन एक काल के बाद उसका बाद हो जाता है। जैसे दवाई है वो अनुभूति भी होती है, व्यवहार में क्षम भी है, लेकिन जैसे एक्सपायरी डेट हुई ऐसे ही हर चीज की एक्सपायरी डेट है। बस ये उसके पहले पहले आपको इसका उपयोग करना है बस। और हम सोचते हैं संसार आज और भगवान कल, ये बोलते हैं ऐसा मत करो, संसार आज है तो भगवान भी आज ही है। चलो 56 श्लोक पूरे हो गए, अभी 57 नंबर का श्लोक है। स्वप्ने जागरणे अलीकः स्वप्ने पि नहीं जागरः द्वयमेव लये नास्ति लयोपि उभयोर्न च। स्वप्ने जागरणे अलीकः, अलीक बोलते हैं झूठे के लिए, अलीक माने झूठे, झूठा। स्वप्न में जागृत झूठा है, अलीक माने झूठा। स्वप्न में जब आप गहरे स्वप्न में जाते हैं, मांडुक्य पढ़ा होगा आप लोगों ने, जागृत में विषयों का भोग होता है और स्वप्न में वासनाओं का भोग होता है, अंतर मालूम पड़ा होगा। जागृत में स्थूल भूख है और स्वप्न में सूक्ष्म भूख है, तो सूक्ष्म भूख का अर्थ है वासनाओं का भोग। स्वप्ने में आप जो दुनिया बनाते हैं वो आपकी बनाई हुई दुनिया होती है। न तत्र रथा न रथ योगा अथ पंथानम सृजति, वहां के सारे निर्माणकर्ता आप ही हैं। कहां? स्वप्न में आप ही हैं। इसकी वजह क्या होगी मालूम है आपने? इसकी वजह क्या है? आप लोग श्रवण करते हैं बहुत बारी, इसकी वजह क्या है? हैं? इसकी वजह यह है, ये जो आंख है ना, ये कितना सुंदर भी आप चश्मा पहनो 50 लाख का, लेकिन इस आंख से आप शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि शब्द आंख का विषय नहीं है और आंख रूप से बनी हुई है। इसलिए आंख रूप से बनी हुई है, इसलिए आंख रूप के गुण को ही ग्रहण करेगी। रूप का गुण क्या है? नहीं, तेज का गुण क्या है? रूप। आंख तेज से बनी है, गलती हो गई बोलने मेरे से, आंख तेज से बनी है इसलिए तेज का गुण जो रूप है वो उसी को ग्रहण करेगी। कान किससे बना है? आकाश से। तो आकाश का गुण जो शब्द है वो केवल शब्द को ही ग्रहण करेगी। यद्यपि संस्कृत भाषा में सर्प का नाम चक्षु सर्वा रखा हुआ है, नाम पढ़ा होगा आपने चक्षु सर्वा, वो आंख से ही सुनता है, सुनता तो नहीं है लेकिन उसको संवेदना का पता लगता है। लेकिन ये इंद्रियां एक एक गुण को ग्रहण करती हैं, इसका कारण ये है कि एक एक भूत से ये बनी हुई हैं, अपंचीकृत भूत से ये बनी हुई हैं। लेकिन मणिराम जी जो हैं वो पांचों से बने हुए हैं, इसलिए ये सपने में देखते भी हैं, सपने में सुनते भी हैं और सपने में खाते भी हैं। वाचस्पति मिश्र ने दृष्टांत दिया, ब्राह्मण थे, विद्वान थे वो, बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। कहते हैं भ्रांति उन्होंने लिखी, 12 साल तक उन्होंने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा, ऐसा बोलते हैं। उन्होंने लिखा है, एक बार भूखे सो गए होंगे वो, कुछ खाने के लिए नहीं मिला होगा, बिहारी थे पक्के, मैथिल ब्राह्मण खाए, रात को वो जो है इंद्र के यहां चले गए। अब यहां तो दही चूड़ा खाते हैं और वहां जब पहुंचे, तद उचितान भोगान भुंजाना, वो इंद्राणी जो आई और उन्होंने ब्राह्मण देवता की इतनी सेवा की और मालपूड़ा हलवा और ये सब कुछ खिलाया, पेट भरा और जैसे ही डकार आया नींद खुल गई। प्रतिबुद्धो मनुष्य शरीरी, और प्रतिबुद्ध होने के बाद देखा तो वही टूटी खाट, न चावल न कुछ न कुछ, ये कौन कर रहा है सब? ये मन कर रहा है। तो क्योंकि मन जो है वो पांचों भूतों से बना, पांचों भूतों के सत्वांश से बना हुआ है और पंचीकृत से, इसलिए उसमें सारी सामर्थ्य है। इसलिए लोग कहते हैं मन के जीते जीत है, पांचों भूतों का से बना हुआ है वो। चलो स्वप्न, ये स्वप्न हो गया मन प्रदान, और मन प्रदान होने के कारण सपने में एक आदमी ऐसा आ गया जो आपसे दुश्मनी करता है, आपका पुत्र भी सपने में आ गया, पुत्र से आप बहुत ज्यादा स्नेह कर रहे हैं, और जो आदमी आपसे द्वेष करता है उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप श्रीनाथ जी चले गए, ग्रीस भाई स्वामीनारायण मंदिर में चला गया, अब वहां आ गया कोई झाड़ू मारने वाला सामने, आपने कहा ये थोड़ा दूर हटे यार, हट, झाड़ू मारा, गंदा कपड़े पहने हुए, सामने प्रमुख स्वामी आ गए, उसके तुमने पांव छू लिए, अचानक आपकी नींद खुल गई। अब आप ये विचार करें कि आपने पांव किसके छुए और घृणा किससे की, आपका मन ही प्रमुख स्वामी बना था, आपका मन ही झाड़ू वाला बना था, और आप तो ये तमाशा देखने वाले हैं, उसको बोलते हैं स्वप्न साक्षी, क्योंकि वो अब तुम जगने के बाद अपनी पत्नी को जो स्टोरी सुनाओगे, ये साक्षी अलग है। लेकिन एक आदमी आपके जैसे ही जो मंदिर में जा रहा है, क्योंकि एक देखने वाला है, अब चुगली आप करोगे इधर की उधर, तो चुगली तो तभी कर सकते हो जब आप मौजूद रहोगे। ये सब हुआ कैसे? ये मन कई रूपों में बंट गया। तो अपने से ही घृणा, अपने प्रति ही श्रद्धा, क्योंकि एक मन कई जगह बंट गया। जैसे ही आप जगेंगे, सब वो अलग अलग समा करके, जैसे मिट्टी से बने हुए कसौरे जब टूट जाते हैं तो मिट्टी हो जाती है, इस प्रकार से मन से बने हुए रथ, रथ योग, घोड़े आदि जितने हैं वो सब मिलकर के अंतिम में क्या बन जाते हैं? मन ही बन जाते हैं। घृणा भी खत्म हो गई, तो अपने से ही घृणा, अपने प्रति ही श्रद्धा, अपने प्रति ही प्रेम, ये तो हो गया स्वप्न। ऐसे ही जागृत अवस्था में ये आत्मा भी कई रूप से बंट जाती है। तो अपने से ही घृणा, अपने से सुखदेव जी महाराज के प्रति बात आती है, जब वो परीक्षित के पास में आता है, पंचदशी कारणिक बड़ा अच्छा प्यारा बात लिखी है, सत्कर्म परिपाकास्ते करुणा निधिनो धृता। आदमी के जब बहुत पुण्य उदय होते हैं तो किसी अच्छे संत का संग उसको अच्छा लगता है, संत की प्राप्ति नहीं, संत का संग उसको अच्छा लगता है। इसके लिए दो दृष्टांत आते हैं। टाइम बहुत तेजी से भागता है, दो दृष्टांत आते हैं। एक जड़ भरत और राजा रघुवंश का, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बार माता आनंदमयी मां ने उनसे आग्रह किया कि आप हमको भागवत सुनाइए थोड़ा सा। तो बनारस में बड़े बड़े विद्वान महापुरुष सब वहां, और माताजी स्वयं सुन रही थी। आनंदमयी मां कोई सामान्य नहीं थी, आप ये समझना, हमने दर्शन किए हैं और इंदिरा जी को हमने वहां देखा है कि भोजन जो बनता था कोई चेकिंग वेकिंग उसकी भोजन की नहीं होती थी, ऐसे ही भोजन जो आता था मंदिर से भोग लग के सामने कटोरी में लेके खीर खा देती थी। वो वहां भागवत सुना रहे थे। वहां स्वामी जी ने जो भागवत दर्शन है उसके प्रक्षिप्त में आप पढ़िएगा जरा, मैं इसलिए बता रहा हूं, भागवत दर्शन पुस्तक का नाम है। उन्होंने लिखा है वो जो राजा रघुगण था वो पिछले जन्म में मृग था, और उनका संकल्प इसका भला हो, वो संकल्प होने के कारण वह राजा बना और उसके मन में सत्य को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। किसके मन में? लेकिन मैं वो नहीं बता रहा हूं यहां, मैं अलग बात बता रहा हूं। उस राजा रघुगण को जब जड़ भरत जी महाराज डांटते हैं तो उसको उनकी डांट अच्छी लगती है, क्योंकि वो अपमान तो करते हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन उस अपमान के अंदर उसको इतना बड़ा मान देना चाहते हैं कि उसके अंदर से अभिमान निकल जाए। उसने कहा कि आप कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं लगते मेरे को। वहां दो शब्द का प्रयोग भरत जी ने किया, जड़ भरत जी ने, कोविदा अकोविदा, भागवत के महत्वपूर्ण शब्द हैं ये पंचम स्कंद के, जो करता है। संत का साथ अच्छा तभी लगेगा जब कोई बहुत बड़ा पुण्य आपका उदय होगा, और वो भी जड़ भरत जैसा व्यक्ति वो भी बोल रहा है तुम मूर्ख, तो भी उसको जैसे मां किसी बच्चे को डांटती है और उस डांट में जो उसको ममता दिखाई देती है, इसी प्रकार से उसमें जड़ भरत जी महाराज की बातों का अपनत्व दिखाई दिया। विद्यारण्य स्वामी जी लिखते हैं, सत्कर्म परिपाकास्ते करुणा निधिनोद्धृता। कभी आदमी के पाप कर्म पकते हैं, अपना फल देते हैं। मैं कई बार आपको समझाता हूं, महाभारत के पात्रों में देखो, कर्ण जैसा चरित्रवान कोई नहीं, कर्ण जैसा दानी कोई नहीं, लेकिन दुर्योधन के साथ ने सब कुछ बेकार कर दिया। विद्यारण्य स्वामी जी लिख रहे हैं पंचदशी में, सत्कर्म परिपाकास्ते करुणा निधिनोद्धृता। किसी महापुरुष ने उठा लिया उसको, जिज्ञासा हो गई उसके अंदर, तो स्वप्नो जागरणे अलीका। स्वप्न जो है जागृत अवस्था में झूठा हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यही है, सपने को झूठा करने के लिए कोई तर्क नहीं देना पड़ता, हमें समझाना नहीं पड़ता कि मधुसूदन जी आप इतने साल से कथा सुन रहे हो, कल रात जो आपने सपना देखा वो झूठा है, बताना पड़ता है। लेकिन संसार के बारे में हम झूठा बोलते बोलते थक गए, लेकिन आपकी समझ में बात नहीं आ रही है, ना हमारी समझ में आ रही है, इसका कारण क्या है, इसका राज क्या है? इसका राज ये खोल रहे हैं अभी, इसका राज ये खोल रहे हैं, सपने की जो सत्ता है वो प्रातिभासिक सत्ता है। कौन सी सत्ता है? प्रातिभासिक। प्रातिभासिक समझते हैं, प्रतीति काल एव अवतिष्ठन्ते इति प्रातिभासिका। जब तक प्रतीति होती है तभी तक रहते हैं, और जिसको प्रतीति होती है उसी के लिए रहते हैं। समझ में बात, जब तक प्रतीति होती है तब तक रहते हैं, और जिसको प्रतीति होती है उसके लिए रहते हैं। जागने के बाद हम व्यवहारिक सत्ता में आ जाते हैं। जागृत की सत्ता कौन है? क्या सुंदर श्लोक भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, स्वप्ने जागरणे अलीका स्वप्ने ही जागृह। जैसे ही आप स्वप्न से जागृत अवस्था में पहुंचते हैं, मैंने प्रातिभाषिक जगत से जब आप व्यवहारिक जगत में पहुंचते हैं, तो आपको प्रातिभाषिक जगत को झूठा करने के लिए कोई तर्क देने की जरूरत नहीं है, वो आपकी अनुभूति में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? सीधी बात, आ जाता है। लेकिन ये जागृत को समझाते समझाते हम भी थक गए, तुम भी थक गए, झूठा बोलते बोलते, लेकिन होता नहीं है ये। इसका कारण ये है, बहुत छोटा कारण है, हम परमार्थ में पहुंचे बगैर व्यवहार को झूठा बोलते हैं। बस सपने में रहते रहते जैसे सपने झूठे नहीं हो सकते, ऐसे व्यवहार में रहते रहते व्यवहार झूठा नहीं हो सकता। जैसे ही वो परमार्थ में प्रवेश करता है, परमार्थ में प्रवेश करने के बाद जैसे स्वप्न को झूठा करने के लिए आपको कोई तर्क नहीं ढूंढना पड़ता, उसी प्रकार से जब आप परमार्थ में पहुंचते हैं तो व्यवहार को झूठा करने के लिए आपको कोई तर्क नहीं ढूंढना पड़ता। आप कभी बौद्ध दर्शन पढ़ के देखिए, जहां बुद्ध के वचनों का उल्लेख आता है, तो बुद्ध ने कभी अपने अतीत के जीवन का उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण यही है, जगा हुआ व्यक्ति कोई अपने सपने के वैभव का उल्लेख कैसे कर सकता है? सपने के वैभव का उल्लेख तो वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति सोया हुआ है, उसको उसके जीवन में सपने के वैभव का महत्व है। बुद्ध के जीवन में सपने के वैभव का महत्व नहीं, क्योंकि वो छोड़ चुके हैं। लेकिन परमार्थ में आए बजे, परमार्थ में जैसे ही प्रवेश होता है, जैसे सपने में कितनी भी कीमती वस्तु हो, उस वस्तु के प्रति आपका ममत्व नहीं है, कोई ममत्व नहीं है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति परमार्थ में प्रवेश करता है, तो परमार्थ में प्रवेश हुए हुए व्यक्ति के लिए व्यवहार की किसी वस्तु का महत्व नहीं रहता। लेकिन शर्त यही है कि आप परमार्थ में प्रवेश कर जाएं। चलो, स्वप्नो जागरणे अली कहा, स्वप्ने नहीं जाग्रह। स्वप्न में बिल्कुल जागृत नहीं है, एकदम खत्म हो गया। क्योंकि इसलिए खत्म हो गया कि जहां जागृत को व्यवहार करने के लिए इंद्रियों की जरूरत है, स्वप्न के व्यवहार करने के लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। हो गई बात, खत्म हो गई। आगे क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात ही बता रहे हैं आगे भी। द्वयमेव लये नास्ति, लय का अर्थ है सुसुप्ति। हाँ, सुसुप्ति में दो चीजों का अभाव हो जाता है। कौन कौन सी दो चीजों का अभाव होता है? विषय और वासना का। विषय का अर्थ हो गया जागृत, और वासना का अर्थ हो गया स्वप्न। अब प्रश्न यह है कि विषय और वासना के बिना सुख हो सकता है क्या? अब यहां पर जरा समझना, विषय और वासना से सुख तब होता है जब अनुकूल बोध हो, और जब प्रतिकूल बोध हो तो दुख होता है। सुसुप्ति अवस्था में न अनुकूलता का बोध होता, न प्रतिकूलता का बोध होता है। इसलिए वो बोलता है, सुखे न अपस्वास्मा न किंचित अभेदी समिति। मैं सुख से सोया, हेतु क्या दिया उसने? न किंचित, क्योंकि मैंने कुछ नहीं जाना। मानो कि सब कोई आपका दोस्त है, बड़ा प्रिय दोस्त आपका है, बहुत बीमार है, वो चल रहा है। रात को आप उसको हॉस्पिटल में मिलके आए, आपने देखा उसकी कंडीशन बहुत खराब है, मिलके आए आप लोग। आप हॉस्पिटल से बाहर निकले और वो मर गया, लेकिन आप इतने थक गए थे आपको पता नहीं लगा, लेकिन इतनी गहरी नींद आपको आई, और आप जैसे ही उठते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं बड़ा सुख से सोया, एकदम फ्रेश हो गया। पत्नी कहती है कि अरे तुम सुख की बात करते हो, तुम्हारा मित्र तो गया। अब जो तुम सुख का अनुभव कर रहे थे, वो किस बात के लिए कर रहे थे? क्योंकि तुमने कुछ जाना नहीं, वहां कोई नहीं था। मैं कभी आपको बताता हूं, क्यों परमात्मा ने एक सैंपल बनाया आदमी के लिए। अब मैं बताता हूं, सैंपल में लिखा रहता है नॉट फॉर सेल, ये बेचने के लिए नहीं है, ये किसी के बगैर भी आदमी सुखी हो सकता है, ये भगवान ने सुसुप्ति में बताया। कोई नहीं होता वहां। एक गुजरात में एक महात्मा हो गए, बड़े अच्छे महात्मा, उनसे मिला हूं मैं, नारायण स्वामी उनका नाम था। वो कहां रहते मालूम है? मांडवी में रहते थे। मैं 1992 में एक बार ऐसे गुजरात घूमते 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 नारायण सरोवर कोटेश्वर से होकर के और उधर से घूमते घूमते उधर आ रहा था। वहां डोंगरी जी महाराज की अंतिम भागवत थी उस समय, वहां उनका भजन चलता था, एक भजन गाते थे वो बड़ा अच्छा, अभी भी आता है वो, मैंने रखा है उनका वो भजन, मेरी मस्ती मुझे कहां लेके आई जहां मेरे सिवा और कोई नहीं। एक जगह जिंदगी की ऐसी है, वो परमात्मा ने बताया कि जहां तुम निश्चय कर सकते हो कि जहां कोई नहीं है, और तब आप बोलते हो सुखेन अपस्वास्मा न किंचित अवेदी समिति। लेकिन वो जो सुख है किसका है? वही भगवान की सेक्रेटरी है। भगवान की सेक्रेटरी जो सुख देती है वो अज्ञान से देती है, और भगवान जो सुख देते हैं वो ज्ञान से देते हैं। देखिए, यदा विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया तम नौमी परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। वेदांत परिभाषाकार लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं द्वयमेव लये नास्ति। लय का अर्थ हो गया सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था में दोनों नहीं है, न विषय है न वासना है, न स्थूल भोग है न सूक्ष्म भोग है, न जागृत है न स्वप्न है, ये कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया में, मैंने आपको कभी दृष्टांत भी दिया, दुनिया में आप कितनी भी बड़ी पार्टी में क्यों चला जा प्रकाश, कितनी भी बड़ी पार्टी में, धीरूभाई अंबानी के लड़के की पार्टी में चला जा, चार घंटा वहां नाच के आ जाए तो इतना थक जाएगा कि घर में आके बोलेगा यार मेरे को अभी तो सोना है बस, अभी सोने का। दुनिया में कोई भी सुख लो आप, बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला खाओ, तुमने जिंदगी में कभी ऐसे भंडारे नहीं खाए जैसे हमने खाए हैं। लेकिन खा करके फिर बाद में जो है ना, दुखांतम च निगच्छति, हर सुख आदमी को थका देता है। लेकिन सुसुप्ति का सुख ऐसा है जहां से आदमी फ्रेश होके निकलता है। अब आपको कोई पूछे फ्रेश होके किससे फ्रेश होके निकले, आप तो क्या बोलोगे फिर वहां? ये तो गजब की बात है, कोई नहीं था इसलिए फ्रेश हो गए बस। इसलिए योग, वेदांत, ये आपको दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित इसीलिए करता है। संसार का कोई भी सुख, कृष्ण की भाषा में यदि कहें तो दुखांतम च निगच्छति, कोई कितना भी बढ़िया सुख, आप अपने लड़के की शादी करो, दूसरे को खिलाओ पिलाओ और बड़े आनंद में आप रहो, लेकिन 10-12 घंटा हो जाए तो फिर देखो आप तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो और आपको बहुत नींद आ रही हो और वो आकर के ग्रीस ऐसा उठाए तो क्या करेगा तुम? उसी को झटक देगा? तो क्यों सो रहे? दुखी होने के लिए सो रहा है, सुखी होने के लिए सो रहा है? तो बोले किससे सुखी होगा फिर वहां? हैं? आप बोलो किससे सुखी होगा तो किससे सुखी होगा? अरे बोला कोई नहीं रहेगा तभी तो सुखी होगा। तो इसलिए आदमी वास्तविक में एक ऐसा सुख है जहां उसके सिवाय कोई नहीं होता। वहां जब वो कुछ समय के लिए जाता है तब वो फ्रेश होकर के बाहर आता है। दूसरे के साथ में रह के फ्रेश होने का, सुखी होने का एक आभास है, लेकिन सत्य नहीं है। यही भाष्यकार ने कहा, जहां ये दोनों नहीं होते वहां से आदमी फ्रेश होकर के बाहर निकलता है। इस प्रकार 57 श्लोक हो गए, 58 की चर्चा कल करेंगे।